नमस्कार श्रोताओं, इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में ठीक 8:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन का, जिसमें हम आपको रूबरू कराते हैं दिन भर की तमाम खेल खबरों से। आज की स्पोर्ट्स कैन के इस एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट दोस्त सिद्धार्थ सिंह। दिन भर की तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आ चुके हैं जाने माने खेल पत्रकार अजय मसंद। अजय, स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
नमस्कार सिद्धार्थ जी।
सबसे पहले नजर अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। विश्व शतरंज चैंपियनशिप में ग्रैंड मास्टर डी गुकेश और विश्व चैंपियन चीन के डिंग लिरेन के बीच 10वीं बाजी ड्रॉ, दोनों खिलाड़ी 5-5 अंक लेकर बराबरी पर। ऑस्ट्रेलिया के साथ दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने अपनी दूसरी पारी में 5 विकेट पर 128 रन बनाए। भारत अभी भी 29 रन से पीछे। अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट के फाइनल में कल टीम इंडिया का सामना बांग्लादेश से और जूनियर महिला एशिया हॉकी कप टूर्नामेंट आज से मस्कट में शुरू। भारत कल बांग्लादेश के साथ अपने अभियान की शुरुआत करेगा। श्रोताओं, खेल खबरों की शुरुआत करते हैं विश्व शतरंज चैंपियनशिप में, जहां पर ग्रैंड मास्टर डी गुकेश और विश्व चैंपियन चीन के डिंग लिरेन के बीच आज 10वीं बाजी भी ड्रॉ रही। दोनों खिलाड़ी फिलहाल 5-5 अंक लेकर बराबरी पर हैं। प्रतियोगिता में लिरेन ने पहली बाजी जीती थी, जबकि गुकेश तीसरी बाजी में विजयी रहे थे। बाकी सारी बाजियां, लगातार 7 बाजियां अजय ड्रॉ रही हैं। और हम लोग स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में इसके पहले भी चेस को बहुत डीप कवर करते आ रहे हैं और इसका विश्लेषण अपने श्रोताओं तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। फिलहाल किस तरह से आपको मूड दिख रहा है इस टूर्नामेंट का?
देखिए, मूड थोड़ा सा घूमता हुआ लग रहा है, थोड़ा सा डिंग लिरेन की तरफ झुकाव दिखने लगा है कि हो सकता है अपनी टाइटल को रिटेन कर लें, जो उन्होंने जीती थी। वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत चुके हैं तो सेकेंड टाइटल भी जीत सकते हैं, लेकिन अभी गुकेश ने हार नहीं मानी है। गुकेश बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं, ये अलग बात है कि 7 कंसेक्यूटिव ड्रॉज हो गए हैं, 4 ही गेम्स बचे हैं रिजल्ट आने के लिए। अगर इसमें एक डिसाइसिव 1 पॉइंट की भी अगर एक लीड ले लेते हैं गुकेश, तो वो डिसाइसिव होगी, नहीं तो फिर आगे जाके फास्टर टाइम कंट्रोल से डिसीशन होगा। अगर ड्रॉ ही ड्रॉ का सिलसिला चलता रहा, काफी उसमें जो है लिरेन काफी स्ट्रांग है क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस भी बहुत है और वो रैपिड चेस में भी काफी स्ट्रांग है, तो वहां पे गुकेश शायद मात खा सकते हैं।
और अगर चेस की बात कर रहे हैं तो क्यों ना बात कर की जाए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित ग्रैंड मास्टर प्रवीण थिप्से से। हेलो प्रवीण जी, आपका स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। और आज जिस तरीके से गुकेश और डिंग लिरेन के बीच में बाजी एक बार फिर रहा रही, क्या कहेंगे?
लग रहा है कि करीबन अभी दोनों ने एक फैसला कर लिया है कि टाई ब्रेक तक जाने की उनकी मानसिक तैयारी हो गई है, तो उन्होंने सोचा कि अभी रिस्क ना ले। एक हमने देखा पहले 2-3 गेम के बाद कोई रिजल्टिंग गेम नहीं निकला और 9वें गेम में गुकेश जब व्हाइट से खेल रहे थे तो हमें काफी आशाएं थी कि व्हाइट से वो जीतने की कोशिश करेंगे, लेकिन उन्होंने बहुत ही सिंपल लाइन चला और ड्रॉ हो गई। और उसी तरह से आज डिंग ने व्हाइट पीस होने के बावजूद 6th और 7th को जो पॉइंट्स की चाल चली, इसमें तो पता चल गया कि ये बाजी ड्रॉ ही हो सकती है, क्योंकि सामने सामने पीसेस ला रहे हैं और लड़ाई कर रहे हैं, चुन चुन के दोनों एक दूसरे के पीसेस के ऊपर पीसेस ला रहे हैं। तो ये स्ट्रेटेजी दो ही चीज में हो सकती है, या तो खिलाड़ी कोई एकाध ऐसी ओपनिंग की प्रिपरेशन रखी होगी जिसे ब्रह्मास्त्र कहते हैं, तो कोई ब्रह्मास्त्र, मुझे लगता है कि गुकेश ने अभी कोई एक ब्रह्मास्त्र रखा है व्हाइट पीसेस से खेलने के लिए जो 11वें नहीं तो 13वें गेम में यूज करेंगे। और डिंग के स्ट्रेटेजी में देखता हूँ कि भले व्हाइट हो या ब्लैक, अधिकतर गुकेश को ही अच्छी पोजीशन ओपनिंग गेम के बाद मिल रही है। ओपनिंग प्रिपरेशन गुकेश की जितनी अच्छी है उतनी डिंग लिरेन की नहीं है, और ये वो जान गए हैं, तो वो भी चाहते हैं कि हम टाई ब्रेक में चले जाए, क्योंकि टाई ब्रेक में अगर जाते हैं तो रैपिड गेम होता है और रैपिड गेम में डिंग लिरेन काफी अच्छे खिलाड़ी समझे जाते हैं। एक बार वो वर्ल्ड नंबर 1 भी बन चुके थे कार्लसन के आगे, तो ये एक डिंग की स्ट्रेटेजी है रैपिड गेम में जाना रैपिड मैच में। और गुकेश की स्ट्रेटेजी रहेगी कि एकाध कोई जो ब्रह्मास्त्र छुपा के रखा है उसको बराबर योग्य समय पे उसका उपयोग करे और गेम।
बिल्कुल, तो जितने भी लोग इस गेम गेम को देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, सबकी सांसें जो हैं वो रुकी रहती हैं, क्योंकि इतना बराबरी का मुकाबला दोनों खिलाड़ियों के बीच चल रहा है। फिलहाल 5-5 अंक लेकर दोनों खिलाड़ी बराबरी पर हैं। जो अगला गेम होने वाला है, उस पर आप किस तरह से अगली बाजी को आप किस तरीके से देखते हैं?
एक तरह से देखता हूँ कि रैपिड में जाना गुकेश को नहीं चाहिए, तो गुकेश को एक गेम जीत के बाकी गेम ड्रॉ करने की जिम्मेदारी है। आज तो मैं समझ सकता हूँ क्योंकि ब्लैक पीस थे, तो ब्लैक पीस से ड्रॉ करना ठीक है, लेकिन 11वें गेम में या 13वें गेम में उन्हें विन के लिए जाना चाहिए, क्योंकि उनकी ओपनिंग की प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, उन्हें 9th गेम के लिए नहीं करना चाहिए, और उन्होंने वैसे सोचा ही होगा। दूसरे से कि इस मैच में थ्रूट मैच में डिंग एक अलग तरीके से खेल रहे हैं, जो प्रॉपरली ओपनिंग प्रिपरेशन के ऊपर वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे हैं
जी।
और वो इस गेम को टैक्टिकल जो कहते हैं कि जो जिस लड़ाई हो, मतलब हमारे पास अस्त्र कितने भी हो, हमारे हाथ में तलवार कितने तेजी से चलती है, उसी के ऊपर मुकाबला होता है। तो डिंग की ये स्ट्रेटेजी रही है कि मैं अपनी तलवार और सामने वाले की तलवार, भले वो शक्तिशाली है मैं नहीं, मेरी तलवार पहले चलेगी
जी।
इस हिसाब से डिंग खेल रही है, स्ट्रेटेजी बहुत ही, मतलब जैसे हम स्ट्रीट फाइट कहते हैं
जी,
ये काफी करेज डिंग दिखा रहे हैं। दूसरे तरीके से गुकेश अगर देखेंगे तो वो कभी ओपनिंग प्रिपरेशन नहीं करते, उनकी स्टाइल जो है ओरिजिनल स्टाइल उनकी एनाटोली कारपोव जो वर्ल्ड चैंपियन थे उनके जैसी है कि वो सोच के अपनी चालें निकालेंगे, अपने प्लान पे चलेंगे। लेकिन ये इस चैंपियनशिप के लिए उन्होंने बेसिकली मुझे लगता है कि ओपनिंग की तैयारी की है, सारे ओपनिंग वो जल्दी खेल देते हैं, जो उन्हें 5 मिनट भी नहीं लेते हैं तब तक करीबन दिन के 40 से 50 मिनट
जा चुके होते
हैं। तो उसमें लगता है कि गुकेश कभी कभी कुछ पोजीशन ऐसे खेल रहे हैं जो उनके चॉइस के नहीं है बट उनके ट्रेनर्स के चॉइस के हो, तो उनको बाद में स्ट्रगल करना पड़ रहा है।
तो प्रवीण, आप इस पूरे टूर्नामेंट पे नजर बनाए हुए हैं, हमारे लिसनर्स को आप अपडेट्स दे रहे हैं, अब हम सबकी निगाहें 11वीं बाजी पर लगी होंगी और उम्मीद करते हैं कि कुछ रिजल्ट आएगा। स्पोर्ट्स कैंस से जुड़ने के लिए और हमारे लिसनर्स को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। जी हां श्रोताओं, बता दें कि आपको 11वीं बाजी कल खेली जाएगी। और बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं क्रिकेट की। एडलेड में ऑस्ट्रेलिया के साथ दूसरे क्रिकेट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने अपनी दूसरी पारी में 5 विकेट पर 128 रन बना लिए थे। भारत अभी भी 29 रन से पीछे है। ऋषभ पंत 28 और नीतीश कुमार रेड्डी 15 रन बनाकर क्रीज पर हैं। और अजय, जिस तरह का मैच चल रहा है, क्या दिख रहा है आपको, क्या होने वाला है?
देखिए, मुझे तो यही दिख रहा है कि ऑस्ट्रेलिया की वापसी होगी और वो एक एक श्रृंखला को इक्वलाइज करेगी। डेफिनेटली कल का वेट करते हैं, क्योंकि अभी भी इंडिया ने 128 पे 5 उन्होंने विकेट खो दिए हैं और सिर्फ और अभी भी 29 रन की जो है बढ़त ऑस्ट्रेलिया के पास है। तो मुझे नहीं लगता है कि ये मैच, और स्पेशली इंडिया जो है पिंक बॉल टेस्ट में, पिंक बॉल में जो है आज जिस तरह हम लोगों ने देखा, जिस हिसाब से बैटर्स हमारे आउट होते गए, मतलब यशस्वी जायसवाल 24 पे चले गए, केएल राहुल फिर से फेल हो गए, इस बार विराट और रोहित का तो खैर अभी फॉर्म चल ही नहीं रहा है बिल्कुल, एक तरह से बल्ला चल ही नहीं रहा। तो इसको देखते देखते लग रहा है कि ये लास्ट रिकग्नाइज बैटर्स हैं। अगर ऋषभ पंत नहीं पारी संभाल पाए नीतीश रेड्डी के साथ, अच्छा एक 100 या 125 रन या 150 रन की अगर लीड नहीं दे पाए, तब तक ये इट इज एज गुड एज लॉस्ट।
तो आइए सुनते हैं आज के खेल पर चारू की ये रिपोर्ट।
ट्रेविस हेड के आक्रामक शतक से पहली पारी में बढ़ी बढ़त लेने के बाद ऑस्ट्रेलिया ने मैच के दूसरे दिन दूसरी पारी में 128 रन पर भारत के 5 विकेट झटक कर मैच पर अपना दावा काफी मजबूत कर लिया है। भारत के खिलाफ लगातार अच्छी बल्लेबाजी करने वाले हेड ने 140 रन की अपनी पारी में 17 चौके और 4 छक्के के साथ शानदार पारी खेली। टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने दूसरी पारी में भी निराश किया और टीम दूसरे दिन 24 ओवर में 5 विकेट खोकर 128 रन बनाकर संघर्ष कर रही है और अब भी 29 रन से पीछे है। दिन का खेल खत्म होने तक ऋषभ पंत 28 और नीतीश रेड्डी 15 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। इससे पहले यशस्वी जायसवाल ने 24 और शुभमन गिल ने 28 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया की ओर से पैट कमिंग्स और स्कॉट बोलेन ने 2-2 विकेट और मिचेल स्टॉक ने 1 विकेट लिया। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली पारी में 337 रन बनाकर 157 रन की बढ़त बनाई थी, वहीं भारत की पहली पारी 180 रन पर सिमट गई थी। अब कल पंत और नीतीश पर भारत को बचाने की बड़ी जिम्मेदारी होगी। उम्मीद है टीम इंडिया कल पूरे जोश से बाउंस बैक करेगी। चारू सक्सेना, स्पोर्ट्स स्कैन।
जी हां, कल का दिन भारत के लिए बेहद अहम दिन है। दुबई में अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट के फाइनल में कल भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। कल सेमीफाइनल में भारत ने श्रीलंका को 7 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। अजय, काफी इम्पोर्टेंट मुकाबला है, खिताबी मुकाबला।
जी हाँ बिल्कुल, और इंडिया पिछली बार जो है बांग्लादेश से हार गई थी सेमीफाइनल में, और उसका जरूर उनको जो है एक वो लेना है, रिवेंज लेनी है, तो डेफिनेटली रिवेंज विल बी ऑन इंडियाज माइंड। और क्योंकि इंडिया ने 8 टाइटल जीत चुकी है, हाईएस्ट टाइटल विनर्स इस टूर्नामेंट में, अंडर 19 टूर्नामेंट, मेंस टूर्नामेंट में, तो डेफिनेटली वो खिताब के दावेदार जरूर हैं। लेकिन अ लॉट विल डिपेंड ऑन आयुष महात्रे, जिनका परफॉर्मेंस, और वैभव, सिर्फ मात्र 13 साल के हैं वैभव सूर्यवंशी। इन दोनों ने जो है अभी, इनफैक्ट वैभव ने तो पिछले 2 मैचेस में हाफ सेंचुरीज मारी हैं, और इनफैक्ट श्रीलंका के अगेंस्ट भी इन्होंने हाफ सेंचुरी मारी थी, जिसके चलते इंडिया जो है फाइनल में पहुंची। तो डेफिनेटली इन दोनों पे बहुत दारोमदार है कि इंडिया जीती है कि नहीं।
बिल्कुल, तो आइए सुनते हैं स्पोर्ट्स डेस्क की ये रिपोर्ट।
संयुक्त अरब अमीरात में खेले जा रहे अंडर 19 एशिया कप 2024 के फाइनल में कल टीम इंडिया का सामना बांग्लादेश से होगा। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में टीम इंडिया खिताबी मुकाबले के लिए पूरी तरह तैयार है। इससे पहले कल वैभव सूर्यवंशी की लगातार दूसरी अर्धशतकीय पारी से भारत ने श्रीलंका को 170 गेंद शेष रहते 7 विकेट से करारी मात दी। सूर्यवंशी ने 36 गेंद में 67 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली और जीत के नायक बने। सूर्यवंशी ने हाल ही में IPL नीलामी में भी सुर्खियां बटोरी थी, जब राजस्थान रॉयल्स ने उन्हें 1,10,00,000 रुपए में खरीदा था। वो लीग के इतिहास में नीलामी में उतरने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने थे। उधर दूसरे सेमीफाइनल में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को आसानी से हरा दिया। जीत के लिए 170 रन के लक्ष्य को बांग्लादेश ने महज 22 ओवर और 1 गेंद में 3 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। भारत और बांग्लादेश की टीम 5 साल बाद खिताब के लिए आमने सामने है, और इससे पहले भारत ने 2019 में बांग्लादेश को 5 रन से हराकर खिताब जीता था। टीम इंडिया 9वीं बार खिताबी मुकाबला खेलेगी, और पिछले 8 फाइनल में वो कभी हारी नहीं है। उम्मीद है कि टीम इंडिया अपनी जीत का सिलसिला बरकरार रखेगी। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन।
उधर ब्रिस्बेन में कल भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा महिला एक दूसरी क्रिकेट मैच खेला जाएगा। 3 मैचों की श्रृंखला में ऑस्ट्रेलिया 1-0 से आगे है। और अब बात कर लेते हैं हॉकी की। जूनियर महिला एशिया हॉकी कप टूर्नामेंट आज से ओमान की राजधानी मस्कट में शुरू हुआ। टूर्नामेंट में कुल 10 टीमें हिस्सा ले रही हैं। ज्योति सिंह की कप्तानी में भारतीय टीम का पहला मैच कल रात बांग्लादेश से होगा, तो अजय काफी रोमांचक मुकाबला है।
रोमांचक मुकाबला है, उसके अलावा जो है अगर यहां से ये टीम टाइटल जीती है, मतलब इनफैक्ट सेमीफाइनल तक पहुंच जाती है, 10 टीमों का है, पूल ए पूल बी है, 5-5 टीमों में बटी हुई है, अगर यहां से टीम जो है सेमीफाइनल में पहुंच जाती है तो जूनियर वर्ल्ड कप लिए जो है वो दावेदार हो जाएगी और जूनियर वर्ल्ड कप में खेल पाएगी। तो मेन इंडिया का जो फोकस होगा जूनियर वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करने का होगा।
बिल्कुल, तो आइए सुनते हैं ये रिपोर्ट।
भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम ओमान के मस्कट में महिला जूनियर एशिया कप में भाग लेने के लिए पूरी तरह तैयार है, क्योंकि उनका लक्ष्य अपने खिताब को बरकरार रखना है। आज से 15 दिसंबर तक होने वाला ये टूर्नामेंट FIH जूनियर विश्व कप 2025 के लिए क्वालिफाइंग इवेंट भी है, जो चिली में आयोजित किया जाएगा। भारत का नेतृत्व कोच तुषार खांडेकर, कप्तान ज्योति सिंह और उप कप्तान साक्षी राणा करेंगे। 2023 में भारत ने फाइनल में दक्षिण कोरिया को 2-1 से हराकर पहली बार खिताब जीता था। भारत को पूल ए में रखा गया है और उसका मुकाबला चीन, मलेशिया, थाईलैंड और बांग्लादेश से होगा। पूल बी में दक्षिण कोरिया, जापान, चीनी ताइपे, हांगकांग और श्रीलंका शामिल है। भारतीय टीम अपना पहला मैच रविवार को बांग्लादेश के खिलाफ भारतीय समय के अनुसार रात 8:30 बजे से खेलेगी। टूर्नामेंट का सेमीफाइनल 14 दिसंबर को खेला जाएगा, वहीं फाइनल का मुकाबला 15 दिसंबर को होगा। उम्मीद है कि टीम इंडिया एक बार फिर अपनी जीत का परचम लहराए। वैष्णवी, स्पोर्ट्स कैन।
और श्रोताओं, चलते चलते बात कर लेते हैं फुटबॉल की। इंडियन सुपर लीग फुटबॉल में समय चेन्नई में बेंगलुरु FC का सामना केरला ब्लास्टर्स से हो रहा है, और आज एक अन्य मुकाबले में इस बंगाल ने चेन्नई FC को 2-0 से हरा दिया। अंक तालिका में बेंगलुरु 10 मैचों में 6 जीत के साथ 20 अंक लेकर दूसरे, और केरला ब्लास्टर्स 10 मैचों में 3 जीत के साथ 11 अंक लेकर 10वें स्थान पर है। और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर मिलेंगे कुछ और ताजा खेल खबरों के साथ। अजय, आप हमारे स्टूडियो में, और तमाम खेल खबरों पर हमसे चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।
धन्यवाद सिद्धार्थ जी।
और श्रोताओं, इसी के साथ अनुमति दीजिए स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम के साथ मुझे यानी सिद्धार्थ सिंह को नमस्कार, शुभ रात्रि।